या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 492।
तीन तीन आदमी का खाना खा जावे और मालूम भी नहीं पड़े कि खाना किधर जाता है। 21 बरस की लड़की तीन चार आदमी जितना खाना खावे और बातें करे, अरेबिक बोले कि उसको कभी अलिफ भी नहीं आता था। तो होते होते ये दारुसलाम में भी लेके आए। इस लड़की को इसकी माँ मेरे पास भी लेके आई। मैंने उसको कहा, देख मेरे साथ वो जिन अरेबिक में बातें करता रहा। मैंने उसको कहा, देख ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये कहता है, यानी जिन कहता है, थोड़े वक्त में आले रसूल इधर आते हैं दारुसलाम में, मैं उनका दीदार करूंगा फिर जाऊंगा। तो तुम आराम से बैठे रहो, एक महीने के बाद हजरत इमाम आने वाले हैं, तो तुम हजरत इमाम के पास इसको ले जाना। उसके घर वाले जो थे लड़की के रिश्तेदार, यानी हस्बैंड और सास ससुर, वो बोहरों के आमिल के पास ले गए। वो बोहरों के आमिल के ऊपर वो जिन ने बड़ा गुस्सा किया। वो कहते, सारी दुनिया के जितने भी तुम मुल्ला आ जाओगे तो भी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो खैर चली आई लड़की, मौलाना हजरत इमाम आए। इसने काउंसिल के अंदर अर्जी की। अभी इमाम तक अर्जी पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे मालूम नहीं। मुझे पास आकर बहुत हो रही थी, मुश्तरी बापा मैं अभी क्या करूं। मैंने कहा, देख शकर, तुमने खत लिखा है ठीक है, कल तुमको हजर इमाम सर्टिफिकेट देंगे। माँ बाप ने फरमान किया था कि 10 बरस से ज्यादा जितने भी मेरे नौकरों ने, इस्माइली होवे या नॉन इस्माइली होवे, मेरी किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी तरीके से उसने 10 बरस से ज्यादा नौकरी की, उसको मैं अपने हाथ से सिल्वर सर्टिफिकेट दूंगा। सिल्वर जुबली का टाइम था। मैंने कहा, तेरी 16 बरस की खिदमत है तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें बहुत से सर्टिफिकेट हजर इमाम ने अफ्रीकनों को दिए और लॉन्गेस्ट सर्टिफिकेट एक अफ्रीकन को दिया। मैंने कहा, जब तू सर्टिफिकेट लेने के लिए जावे ना, तो माँ बाप को जल्दी से इतना ही कहना, खुदा में मेरी लड़की को जिन ने पकड़ा है। वो लंबी चौड़ी बात मत करना। और जब सर्टिफिकेट लेने के लिए गई तो कहने गए कि खुदावन, रो पड़ी बिचारी, खुदा मेरी लड़की को जिन ने पकड़ा है। ऐसा? कल बंगले लेके आओ। वापस आई तो मुझे ढूंढती थी, कहती माँ बाप फरमाया बंगले लेके आओ। मैं बोला, बस तेरा काम हो जाएगा। अब ये सुबह बंगले लेके गई, उसको टैक्सी में बिठा के मौलाना हजरत इमाम वारिस अल नूर कासम के घर ठहरते थे। और जो गाड़ी मौला यूज करते थे, प्रेसिडेंट नेरेरे ने साहब को पहले से अर्ज की थी कि सिक्योरिटी रीजन से मेरी अर्ज ये है कि किसी और की गाड़ी यूज नहीं करो, मेरी गाड़ी होवे स्टेट हाउस की और ड्राइवर भी मेरा होवे। तो ड्राइवर भी नेरेरे का था, गाड़ी भी स्टेट हाउस की थी और उधर मिलिट्री का पहरा था। अब इसको अंदर कौन जाने देगा? इस बिचारी ने बहुत वादा किया कि तुम अंदर जाके इतना कह दो कि वो जिन वाली लड़की बाहर आई है। नेंदा हटा दिया उसको, खड़ी रही बिचारी, क्या करे। आधे घंटे के बाद सरकार दरबार में आने के लिए गाड़ी में निकले। जैसे ही गाड़ी नजदीक आई, ये पहरे वालों ने दरवाजे खोले, ये लड़की माँ का हाथ छुड़ा के जंप करके साहब की गाड़ी के सामने आ गए। वो जो प्रेसिडेंट नेरेरे का 61 बरस का बूढ़ा ड्राइवर है, बहुत पुराना ड्राइवर है, वो हमको सुनाता था कि मेरा पांव एक्सेलरेटर के ऊपर है और इंजन फास्ट चल रहा है, ब्रेक नहीं लगाई लेकिन गाड़ी स्टॉप है। लड़की सामने खड़ी है, मौलाना हजरत इमाम पीछे आराम से बैठे थे। अब जो गाड़ी खड़ी हो गई धक्का लग के, तो साहब ऐसा आगे आए और ऐसा हाथ करके लड़की को, जैसे ग्लाइड करती हो ना उठा के कोई ले जाए, इस तरह जैसे ही माँ बाप ने हाथ फिराया, वो हाथ की स्पीड के साथ लड़की बढ़ा गई, लड़के भी। अब ये वापस टैक्सी में बैठी और साहब की गाड़ी के पीछे, लेकिन माँ बाप अंदर आ गए, ये लोग बाहर खड़े रहे। काम काज करके मौला बाहर निकले तो ये लड़की और इसकी माँ खड़ी थी, फिर भी रिश्तेदार थे, हजारों आदमी थे। मौला जब बाहर आए तो लड़की को देखा, साहब इसके पास गए, मुंह नीचे है। साहब ने इसको इंग्लिश में कहा, उर्दू में कहा, माँ ने इसको कहा, منہ اونچا کرو. صاحب نے دو تین دفعہ کہا میری طرف دیکھو منہ اونچا کرے ہی نہیں. حضرت امام نے اپنے دو ہاتھ اس کے دو شولڈرز کے اوپر جیسا ہی ایسا ٹچ کیا فوراً اس نے صاحب کو دیکھا اور صاحب کے پاؤں میں گر پڑی. دعا سے اس کی شکل بدل گئی, جن چلا گیا. جنات ہیں اور جنات پزیس کرتے ہیں, لیکن جنات ان کو پزیس کرتے ہیں کہ جن کو یا تو کوئی تکلیف ملتی ہے ان کی طرف سے, یا وہ ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی سزا کے طور پہ کسی جن کو کہتا ہے کہ جاؤ پکڑو اس کا. لیکن یہ پوزیشن جو ہے یہ روح کا پوزیشن نہیں. جن اگر کسی کو پزیس کرتا ہے تو اس آدمی کی سول کو پزیس نہیں کر سکتا, کیونکہ سول ہے وہ پیور اور ڈیوائن ہے. وہ کیا کرتا ہے, مائنڈ کو پزیس کرتا ہے, اور مائنڈ کے کنٹرول میں جیو ہوتا ہے تو پھر دکھ اٹھاتا ہے, دکھ کی فیلنگ ہوتی ہے. مگر جو روح ہے وہ اکیلی رہتی ہے. روح کی جو ٹرانس مائگریشن ہے وہ تھرو جیو اور مائنڈ ہوتی ہے, لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں جا کے روح بالکل اکیلی ہو جاتی ہے, یعنی فرشتوں کے اس ہائر درجے کے بعد, عالم ملکوت کے بعد, عالم جبروت اور اس کے بعد عالم لاہوت جب آتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی اوپر گزر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حضوری میں جاتا ہے. اور ایک ایسا دن آتا ہے کہ اس کا وہ ایسٹرل بدن, نورانی بدن, اس کی لائف فورس جس کو ہم جیو کہتے ہیں, اس کا مائنڈ, اس کی انٹیلیجنس سب ڈیزولو ہو کے, یعنی مکس ہو کے خدا تعالیٰ کے نور میں چلے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں واپس خدا سے آئی ہیں, خدا میں واپس چلی جاتی ہیں, برباد نہیں ہوتی, مٹتی نہیں, مگر خدا کی ہستی کے اندر گم ہو جاتی ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا. یہ ہے روح کی کنڈیشن. اب روحانی عالم میں روح کے بہت ٹرانس مائگریشنز ہیں, ایک درجے سے دوسرے درجے پہ, ایک شیپ سے دوسرے شیپ پہ, ان میں کبھی کبھی نیچے بھی اترتے ہیں سزا کے طور پہ, پنشمنٹ کے طور پہ, کبھی واپس اوپر بھی چڑھتے ہیں. یہ آگے جانا پیچھے ہٹنا لائف میں بھی ہے, لائف کے بعد بھی ہے, تاکہ اس وقت تک کہ انسان خدا کے روح میں مل جائے. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے میری اس بات کو اچھی طرح سنا, سمجھا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کوشچنس ہیں میں راضی خوشی سے ان کوشچنس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بھائی. وہ تو ہے ہی نا, میں نے اس کا خلاصہ کیا کہ اگر ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو دکھ دیا ہے یا قرضہ لیا ہے تو اس کا بدلہ چکا جانا پڑتا ہے یا معافی مانگے. یس ایگزیکٹلی, یس. ریلیشن شپ از میڈ آؤٹ آف دس کنیکشن, لینا دینا, اور اس کو پیروں نے لین دین کا حساب کیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں لا آف کرما. یہ جو لا آف کرما ہے قرآن شریف میں ہم کو جگہ جگہ ملتا ہے, اور اس کا یہ ہوتا ہے خدا فرمایا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم محنت نہ کرو گے, اور رسول اکرم فرمایا تمہارے سب اعمال تمہاری نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں. عربک میں ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیۃ, تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ تمام تمہارے نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں. اور اللہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی, کچھ نہیں دیا جائے گا تم کو جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہیں کرو گے. They must have some means. Jinnat are like human beings. They get married, they produce children, they eat, they sleep. The only thing is they are invisible to human eyes. So they have also limitations. Like any person cannot go to Imam and see him. So he must have a way or someone to take him there. No, not necessary. It was an excuse that he caught her. He found an excuse, an easy way.
I might have understood Sir Amirali wrongly, but in spirit of Islam, he says that the evolution of soul is always progressive. You're talking of regressing as well, and he explains that regression is the hell that we experience here. The unhappiness, etc., we get is our regression. But after death, there is always progression of soul.
No, according to our Gnanic literature, it is not correct. Even after death, regression is there, or at least detention is there.
Detention, yes, but not regression.
That detention, any bad deed regresses the soul.
And the second question is about soulmates. I think that's perhaps Yasmin was
soul.
Soulmate. There's a new theory in this Western books that when souls are created, the bunch of souls created together have that affinity, and right through the creation, you either associate with them as your children, your husband, your wives, or your mates, or your guru, or your pupil, etc., and that helps you in your progress towards your ruhaniyat.
No, we don't believe in that way, but we believe that because of lendin, because of law of karma, and because of our relationship with any person during the human life on this earth, our new life is judged upon that.
But does that mean that people we...
I just gave you the example of this Rahmatullah, Suleiman Rahmatullah's son. So there are so many such other examples too. हम ये चीज नहीं मानते हिंदू मानते हैं लेकिन हम ये चीज नहीं मानते लेकिन एक चीज है कुरान शरीफ में से एक ऐसा वाकया मिलता है अब वो फिजिकल है या मेंटल है उसका खुलासा खुदा ने नहीं फरमाया लूत नबी की उम्मत को खुदा ताला ने बद्दुआ की कूनू की रादा तनखा सही तहकीक तुम बंदर बन जाओ और वो बंदर बन गए तो इससे जाहिर हुआ कि इंसान से खुदा ताला ने उनको बंदर बना दिया अब ये बंदर कभी बदन नहीं बना तो वो मेंटल हालत के अंदर उनकी जो स्टेट थी वो बंदर जैसी हो गई
तो आप रिग्रेशन को कैसे समझा सकते हो आप जब यू आर यूजिंग द वर्ड रिग्रेशन
हाँ अभी देखो एक आदमी है इबादत कर रहा है और उसकी रूह जो है वो पर्दों के अंदर है ये पर्दे गुनाह के पर्दे हैं मैं एक एग्जांपल दूँ एक टेबल लैंप है उसके ऊपर हम जब कोई गुनाह किया एक काला कवर कर दो तो लाइट घट जाएगी फिर गुनाह किया फिर एक कवर या दो कवर चढ़ गया एक कभी ऐसे गुनाह होते हैं कि पांच कवर एक साथ चले जाते हैं यानी ठीक होते हैं फिर कुछ नेकियां की तो एक आध कवर निकल गया फिर हमने गुनाह किया तो एक आध कवर चढ़ गया तो इस तरह करते करते अगर गुनाह बढ़ गए तो लाइट छुप जाती है अंधेरे का रेशो ज्यादा हो गई तो ये रिग्रेशन हो गई रूह के अंदर जो खुदा ने लाइट है रूह है वो पाक है उसके ऊपर गुनाहों के आमाल के कवर चढ़ गए या कवर कम हो गए तो प्रोग्रेस और रिग्रेशन यही है हमारी बंदगी आमाल से रूह जो है वो प्रकट होती है जाहिर होती है और गुनाह करने से वो कवर हो जाती है और यही रिग्रेशन है और यही प्रोग्रेस है
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ने ऐसा कोई गुनाह किया होगा तो उसको सोल को रिग्रेशन मिलती है तो वो इंसान के स्वरूप में जरूर आता है दुनिया में लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होगा
हाँ बराबर है उसमें ऐसी बहुत सी खामियां रह जाती हैं कि जो आला दर्जे के इंसान में होती हैं अभी हमको पीरों ने एक बात और फरमाई है इसने सवाल किया कि ये बात आपको गिनानों में भी मिलेगी और शास्त्र में भी तो मुनिवर भाई अगर आप पढ़ो तो ऐसा उसमें फरमाया गया है कि जीवों को खुदा प्रोग्रेस करके परफेक्शन की हालत में जाने के लिए चांस देता है और ये चांसेस आज तक यानी चार युग के अंदर उसमें अभी भी किसी के कुछ बाकी होंगे तो फरमाया पहले युग में 35 दफा दूसरे युग में 25 दफा, तीसरे युग में 16 दफा, कल युग में 8 दफा, तो 35, 25, 16, 8, 84 पे रफर हो। फिर फरमाते हैं कि हर 1,00,000 बरस के बाद उस जीव को इंसानी जन्म मिलता है, और ये जो 1,00,000 बरस हैं इस दुनिया के ऊपर, ये 1,00,000 बरस में करोड़ों और हिसाब बिगड़ के जो जीव होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, इंसान बनते हैं, हाई इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, और फिर उनको मगरूरी आ जाती है, उनको सेल्फिशनेस और ग्रीड पकड़ लेती है, और फिर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद इस दुनिया के अंदर से लाइफ खत्म हो जाती है। वो जीव जिनको खुदा उठाना चाहता है तो वो उठा के किसी और आलम के अंदर ले जाता है, मगर वापस कई हजार बरसों के बाद दुनिया आराम करती है, सेटल होती है, फिर एक एमीबा पैदा होता है, और वो एमीबा फिर बढ़ते बढ़ते एवोल्यूशन की थियोरी से इंसान बनता है। इस तरह 84 साइकिल एक जीव को मिलती है। इसकी फुल डिटेल्स, बिल्कुल फुल डिटेल्स आपको तमनिवर भाई में मिलेगी।
In the evolution from where a soul moves from the mineral to the plant to the animal to the human kingdom, how many chances is he given in the human kingdom? How many chances is he given as a man
to fulfill? 8 chances.
Is it somewhere in the Quran that he's given?
In Quran I don't find. There may be which I don't know. But up to now I've read Quran many times.
Mm-hmm.
I couldn't find anything.
Because the way we were explained this thinking was as the kingdoms are towards progression, the soul when it hits the human form can never regress, and it's given one chance only, and the soul is in gradation. Correct me if I'm wrong, if I'm misinterpreting Sufi. There is a gradation of the soul, and when the soul does not reach what it is supposed to reach, it disintegrates. Now, I do not know what disintegration means in that form. And I'm wondering if there's some sort of a happy mix that we have with the Jinans there.
I don't agree with the Tusi, because Peer has more higher authority than Tusi. Tusi or Kermani or Sijistani, all these great Dais, of course they were Ismailis, very learned people, but they were not Peers, and they have no caliber to stand with a Peer. When Peer tells us and Tusi tells, there is a difference between two, so we follow the Peer, not Tusi. Tusi can make any mistake, but according to our Iman, a Peer cannot make any mistake, because the Peer is Noor of Nabi, Tusi is not Peer of Nabi. Now those Ismailis who are living outside India, say in Middle East, they could not find such a literature that Peers have produced. You should remember one thing, lot of Ismaili literature went into the hands of Bohras after the Egyptian Fatimi Khilafah. Bohras took away all of our literature. And then, second time, we rewrote in Al-Mut for 171 years. That was also destroyed. Now this Jinanic literature remained. The literature in Iran was destroyed by the destruction of Al-Mut. And therefore, our Ismaili Dais, they could not get the opportunity to read this literature, Indian literature, because that literature was destroyed, and Fatimi time of literature went into the hands of Musta Alviya people. And that's why these Dais, they could not match his peers.
No, I'm asking a question whether there's a happy mix. Yeah. No, I don't have to read Tusi. I'm not even arguing with Tusi. I'm just asking a question. There's a happy mix.
That's not the idea that it's mentioned in Tusi, the way you described.
Then I asked you for correction if I was wrong. Fine.
सच बात है. अभी जो अवतार मिला है तो वो जीव को मिला है, रूह तो उसके साथ कैद है ना. रूह का दर्जा ऊंचा नीचा नहीं होता, ये जीव का दर्जा ऊंचा नीचा होता है. रूह तो एक डिवाइन फोर्स है. पीर के ज्ञान में है कि प्राण पुरुष तो अमर छे, काया मरी मरी जाए. प्राण मीन्स जीव, पुरुष मीन्स सोल. और काया है मौत, जन्म दुख सुख इंसान की काया को है. प्राण पुरुष तो अमर छे, सोल है वो अमर है, डिवाइन है, एटर्नल है. हजरत इमाम ने फरमाया सोल इज एटर्नल, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड. और ये ज्ञान के पीर के ज्ञान में है कि जो सोल है वो अमर है. तो ये दुख सुख और रिग्रेस जितनी भी है वो सोल के लिए नहीं, जीव के लिए है. सोल तो अंदर कैद है. ओके खुर्शीद. Yes. He can forgive. But one thing here you must understand, we all must understand, that God forgives the nafarmani committed of God. But if I have done something wrong to you, you must forgive me, otherwise God will not forgive me.
But there is a barrier which is never clear. There has to be a way out.
Yes.
Ibadat. So we need to go to God. And we, when we do Ibadat, we have to go to God. It's not going to be the deal. We keep us in the middle of the deal. So we will forgive us. Okay, if anything is just that, here is the life of the deal.
मैं उसके लिए तो वो अनाउंस नहीं किया ना. ही डिड इट फॉर हिमसेल्फ एंड ही सेट एन एग्जाम्पल दैट यू डू इट बट पीपल डिड नॉट फॉलो दैट लेवल. ही डिड इट इन हिज लाइफ टाइम फॉर हिमसेल्फ एंड ही दैट्स व्हाई ही वाज फॉर अदर्स. ही कांट डू फॉर अदर्स बिकॉज इफ एनी वन हैज कमिटेड he guided, but he can't do that. Suppose you, I owe you an amount. So I come to you, beg you, please forgive me. What Prophet Muhammad would do here? Can he forgive your sin? But he has guided people that don't die without paying your debt. That's the guidance. There might be some hadith that it did not come to us. It might have lost during these 1400 years, but I couldn't find any such a thing. Yes, it is the theory of Ma'ad.
It is our own Adal, which gives us punishment for sin.
True.
Okay. Maybe it's another thing that Allah sometimes tries to kill somebody to punish the person.
Because it is because of his sins. It's the judgment itself.
So that is a thing contradicting.
It's not contradicting. When a magistrate gives any punishment to any criminal, it is the police who puts that his action.
But another thing
Allah himself doesn't do that, but he is commanding a particular musibat to go on a man because of his sin. It's a method of... So you take in that way, commandment is doing, is not doing. If you have committed a crime and magistrate punishes you and he sends you to jail, so it is not that he is sending you to jail. He is not, judge is not responsible. Judge is not responsible.
It is the law.
Yes, it is. It is the same. And that is Mizan and Adl and Islah. True. Like Abdal.
Yeah. So how would you compare this with the few activities? Because when Imam Sheikh he had a diary of Hujjah, Imam gave him a diary. Like, he had authorization from the Imam. And he presented that they had authorization of interfacing, tabulating the Quran, like Hassan al-Man is in the Sahih al-Tabir. So how would you relate this to the
Peer is higher than those Abdal and those 12, because Peer is Hujjatul Imam, next only to Imam, higher on anyone, because Peer is the Noor of Nabuwa, and all those 12, they are under the Peer, and there are still again under those 12, some other 12 or 13 or 50 more. So all together, Imam Sultan Muhammad Shah says, there are 313 such higher moments who are spread throughout the world in all over the places, and they are under the peer. Anyone who dies, immediately another man is promoted to that position, but 313 moments of that caliber remain always, but they are all under peer, lesser than peer. Rasakhun fil ilm is Imam himself. No, Imam will never make ta'wil in writing or publishing and giving to the hands of everyone, because it is too heavy for everyone. But Imam gives ta'wil in many other ways. Well, to dies, or if we have anything, we go to Imam and Imam gives that. For instance, I give you, in Quran there isn't anything saying about talking into microphone or public address system. I remember in 1934 I was in Kanpur in India, and at that time this public address system was newly introduced in India. So the time of Eid came, and about 25,000 to 30,000 people gathered for that. That was Eid al-Ramzan. There was only one, the Pesh Imam, and then other people after every 10 lines, like that in Ghadir-e-Khum, every 10 lines there was an announcer. So you know what happened? The front lines, they finished their namaz, and the last people, they still were at the half place. So they thought that now public address system is there, let us introduce that in Eid al-Zuha. So one Maulvi announced that they introduce the public system, and they arranged it. But the other Maulvi made a fatwa, it's a haram, because there is a shaitan inside. He never thought about it. Now where to go? They fought together, one man died, so many injured. The government imposed curfew order in that, and well, the Eid could not be followed. They all went to their respective local masajid, and there they performed the Eid namaz. Now, had there been imam in them, imam's order is final, and that is the ta'wil of the Quran. Now, there is no explanation in the Quran about this radio or public address system, whether it is right or wrong to speak in microphone and announce in the public. There is no any explanation about cigarette in Quran. There was only one, the Pesh Imam, and then other people after every 10 lines, like that in Ghadir Khum, every 10 lines there was an announcer. So you know what happened? The front lines, they finished their namaz, and the last people, they still were at the half play. So they thought that now public address system is there, let us introduce that in Eid-ul-Zuha. So one Maulvi announced that introduced the public system and they arranged it. But the other Maulvi made a fatwa, it's a haram because there is a shaitan inside. He never thought about it. Now where to go? They fought together. One man died, so many injured. The government imposed curfew order in that. And the Eid could not be followed. They all went to their respective local masajid and there they performed the Eid namaz. Now, had they been imam in them, imam's order is final. And that is the ta'wil of the Quran. Now, there is no explanation in the Quran about this radio or public address system, whether it is right or wrong to speak in microphone and announce in the public. There is no any explanation about cigarette in Quran. There is no any explanation about marijuana in Quran. So this is Imam who makes such a judgment. And he gets this from the Quranic inspiration and he is one of the Rasikhun Filim.
Yes,
Have you read this Pandiyat Javamardi?
Yes.
There is a chapter of fear on it.
Yes, fear.
And that was during Iranian times?
Yes, yes. Pandiyat Javamardi was given a status of fear.
Although it is given the status of a fear, but it is written by Imam. Imam Mustafa Sidillah. So it is outside the Indian literature. It was written in Iran. If you read, particularly, don't read the translation, but read. You are Persian, so you can take better advantage of it. It is in Persian itself, and it's a marvelous book. So Imam Mustan Sirbila, in Iran, he wrote himself, and he has given the status of peer, what peer is. And in olden days, as I told here, explained that in Arabic, the word peer is not found in our Arabic literature, but there is Imam Mustauda. And that Imam Mustauda is peer. Imam Hassan. Exactly. That is true. So, this is the foundation. Imam Hassan was Imam Mustauda Hussein Mustakhar. And likewise, nasl by nasl, it has come up to now, Maulana Hazrat Imam himself is peer. And Imam Sultan Muhammad Shah says, I'm giving my two offices to Kareem, Imamat and Piratan. I told you, this is Persian literature, Imam Mustan Sarbila. It's a Persian literature. At least there is impartial literature. You should
speak of knowledge.
Exactly, but you should know we have no access to each and everything it was written. So much has this been destroyed. Persian literature has been destroyed.
Might
have been destroyed during the course of time, but you know, Qazi Noman, although he was Qazi al-Quzzat, but in ilm he was lesser than Shirazi, Muhyiddin Shirazi. And they both were fighting for that. But Shirazi was a naik man, better than Qazi Noman. Although officially Qazi Noman was higher than him, but in ilm, Qazi Noman was not equal to Shirazi. And mind you, this is about 1,000 years old matter. Many things have been lost. The only literature that now we find, that is the only literature. There might have so many else others. Have you ever found any Ismaili translating Quran? The Tawil is done only for a few ayats only. But is there any Ismaili Dai or any Ismaili literary figure has translated Quran?
No, but that's why? How you pronounce it, that there is ayat of Muhammad in Mutashara.
Okay, but why Ismailis did not write any translation of Quran?
Because there was no need.
No need, that is my answer. Because Imam is there. So there was no need of Tawil. And if any Dai has made any Tawil, it might be by the guidance of Imam to him. So Imam did not find any need to give any Tawil.
No, but like, Mr. Zakaria, there's a lot of Quranic ayahs which are
I believe and I agree with you. It is true that he has written Asas al-Tawil and made so many Tawil, but it was his own personal effort. Imams could not write, did not write, because there was no need for that. And all people are not equal to understand this. And these mutashabihat are not explained fully by any man, including Qazi Noman, or including any Hamiduddin Kirmani or any other person. All the mutashabihat have never been described anywhere. It is only the prerogative of Imam. And Imam, because Imam, he knows better. We simply follow his farman.
No,
it is also in our Ginan.
The first time I ever find that universe, I never had that
in Ginan. Yes, in Ginan, there are so many other things also. Whatever you have heard is not even 0.5%. Ginans are full. And there are so many things that Ginans explain, no other Arabic or Persian literature explains. And inshallah, bit by bit, you will come to know.
We have last question.
Are you kya? Mia Bibi mein se kisko main pasand karun?
There is always a
first. ये तुम्हारी एक जेंटलमैनशिप है हाँ बोल बेटा
आ
बोल बोल
not necessary.
It depends on the judgment of God, whether he should go back to earth, whether he should go to Alam-e-Malkut, or whether he should go to anywhere else. I cannot explain this thing. No one can say what will be his condition, because it all depends on his amal. And amals are only judged by God.
Then we won't be able to reach.
Well, it depends on his amal.
How long? Are there any more cases?
Shanachat-e-Imam. If Shanachat-e-Imam to the extent of truthfulness and the high level, well, then he has the chances. He has the chances. It is in the hands of the lawmaker. But every person, every man, every soul will be given chances. Not only chances, but favor and blessings also. So that he reaches. And ultimately, all souls, whatever the condition now on earth, all souls, irrespective of anyone, they will reach to the ultimate. Well, the word Ismaili is a medal. The main thing is the recognition of Noor on earth. There are so many men, I know personally many people, amongst French people, amongst the Hindus, even some singers, who actually do ibadat, meet Hazar Imam, get his guidance, and they are never shown as Ismailis outwardly. And on the other hand, there are so many Ismailis who are actually enemy of the faith inside Ismaili Jamaat. So the word Ismaili has no meaning in this way. It is the ibadat, it is the amal, and it is the blessings of God and His favor that counts.
In other words, he or she has the recognition of Imam.
Certainly. Because without the recognition of Imam on earth, no one will be given salvation. I want to go now.
Oh, yes.
Yeah.
Prani
means a living person. Even an animal is also prani. So pran means the jeev, and hans is a roo. So Jiremara Hansa, he himself is telling to himself. It's a kind of auto-suggestion.
There's one more expression,
jeev. Jeev.
Pran, jeev, and Hansa.
Pran, jeev is one thing. And Hans and Atma is one thing.
Hansa.
Hans is Atma.
So Hansa should be enlightened first.
Yes. Thank you very much. अरे तुमने अपना हक दे दिया था बीवी को
फोन पहला
अच्छा बोलो लास्ट क्वेश्चन
अच्छा हमारी जो सेरेमनीज है एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल दोज आर द सेरेमनीज व्हिच करेक्ट मी आई डोंट इट विल हेल्प द
सोल
सोल टू प्रोग्रेस इसमें जो सेरेमनी है इसमें एक सेरेमनी जो छाते उन फैमिली मेंबर छाते देते हैं तो वो छाते वो जीव के लिए देते हैं और अपने लिए देते हैं
जीव के लिए एक्चुअली हर आदमी को उसके जो रिश्तेदार हैं वो मैयत को छांटा देते हैं कि मेरा कुछ भी तुमने गुनाह किया मैं तुम्हें माफ करता हूँ अभी 50 आदमी हर आदमी छांटा देवे उसकी जगह मुखी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल छांटा देता है यानी हम उस जीव को माफ करते हैं
जो हमारा गुनाह किया
हाँ और हम उस एट ए टाइम द सेम टाइम सिमल्टेनियसली वी ऑल्सो बेग हिज पार्डन और ये जो छांटा है ये भी रसूलुल्लाह ने मैयत को छांटा दिया है वो किसी वक्त बताऊंगा और मैंने किसी वाजों में जिक्र भी किया हुआ है
एक जब अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सब रूहों को पैदा किया वो रूह जो नंबर थे जितने थे उतने है उतने रहेंगे
नहीं 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 खुदा तो खुदा के एट्रीब्यूट्स में एक नाम है अल बारी बारी का मतलब है रूहों को पैदा करने वाला खालिक है वो मैटर को पैदा किया है लेकिन बारी जो है ना वो रूहें पैदा करता है वो तो रूहें चालू उसका काम चालू है गॉड नेवर स्लीप एंड ही इज नॉट डिलेइंग एनीथिंग थैंक यू वेरी मच And I... Okay.
What a...
On behalf of all the LYSs and WTPT graduates, we want to thank Rai Abu Ali for enlightening us and giving us the excellent opportunity to meet today's gathering and giving us a beautiful talk on the subject of transmigration.